आज बहुत सुंदर विशेष सत्र हमारे बीच में हमारी मंजू दीदी जी लेकर आई हुई हैं। आप सभी को आज के इस विशेष राजयोग शिविर सत्र से बहुत कुछ प्राप्ति होने वाली है। आप सभी का आज के इस विशेष सत्र में हम स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं और आज के लिए यही कहना चाहते हैं, आसमान पर तारे हैं, जरा आंख उठाकर देखो। आसमान पर तारे हैं, जरा आंख उठाकर देखो। सागर में मोती है, जरा गहरा जाकर देखो। आपको मिलेगा हर पल एक बाबा का साथ, आपको मिलेगा हर पल एक बाबा का साथ। सिर्फ एक बार दिल से प्यार से उसे पुकार कर तो देखो, उसे पुकार कर तो देखो। जी हाँ, ऐसे उस प्यारे पिता परमात्मा, निराकार शिव परम पिता परमात्मा का, परम सत्ता का सत्य परिचय उससे रूबरू कराने के लिए हमारे बीच में हमारी आदरणीय मंजू दीदी जी पहुंची हुई है। जोरदार करतर भली से हम दीदी का स्वागत करेंगे। दीदी इसी तपोभूमि में वरदानी भूमि में रहती है, तो सबसे बड़ी विशेष बात यही है। और दीदी करीबन 43 वर्ष से इस ईश्वरीय यज्ञ की पढ़ाई पढ़ रही हैं। आप 35 वर्षों से समर्पित रूप में सेवाएं दे रही हैं। करीबन 22 वर्ष से हमारे एक बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स है, ज्ञान सरोवर। आप सबका कल घूमने का दिन है, आप वहां पर भी देख करके आएंगे, बहुत सुंदर बना हुआ है। उसमें आप 22 वर्षों से करीबन सेवाएं दे रही हैं और देश विदेश में भी जाकर के आप कई सारे ज्ञान के ऐसे गुह रहस्यों को खोल करके अनेक आत्माओं को लाभ दे रही हैं, उनका कल्याण कर रही हैं। तो दीदी जी तो बहुत विशेष आत्मा है, वरदानी भूमि में है, तपस्वी भूमि में बैठी हुई हैं। तो जोरदार ताली से हम दीदी का स्वागत करेंगे। और एक विशेष बात आप सबको जरूर सुनाना चाहेंगे इस तपस्वी भूमि वरदानी भूमि के लिए। एक बार यहाँ पर डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस थी, हम भी कुछ गेस्ट को लेकर आए हुए थे यहाँ पर, और जैसे रास्ते में हम बहनें उनको पक्का करते हैं कि वहां जाकर के आप घूमने नहीं जा रहे हैं, घूमने के स्थान कई हैं, लेकिन यहाँ विशेष आप आए हैं इस ईश्वरीय यज्ञ की पढ़ाई को पढ़ने के लिए, यहाँ के आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ लेने के लिए। तो जैसे कि हम उनको पक्का कराना चाहते थे, तो वही रास्ते भर हमको पक्का कराते रहे, दीदी प्लीज सुबह मॉर्निंग हम 10 बजे के पहले कभी उठते नहीं हैं, इसलिए प्लीज दीदी हमको मॉर्निंग सेशन हम कभी अटेंड नहीं करेंगे, आप हमको फोर्स मत करिएगा। और 10 बजे के पहले मैं नहीं उठ सकता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, सब जैसी आपकी मर्जी है हम वैसे ही करेंगे। पूरा रास्ता वो हमको इतना पक्का कराते आए कि आप हमको 10 बजे के पहले उठाएंगे नहीं, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। पर हमारा सोचना था कि ये शिविर जो सुबह का मॉर्निंग का है, ये आपकी आत्मा के लिए, ये आपके लिए है। तो फिर भी हमने कहा ठीक है, आपने कहा है हम नहीं आपको उठाएंगे। जैसे यहां पहुंचे और अगला दिन स्टार्ट हुआ मॉर्निंग 4 बजे, भाई साहब का फोन आया, दीदी हम नहा धो करके तैयार हो गए हैं, रेडी हो गए हैं, क्या करना है, अभी कहाँ चलना है। समझ गए ना आप, जैसे ही इस धरनी पर कदम रखा ना, तो तुरंत ही परिवर्तन होना चालू हो जाता है। तो ऐसी बहुत अच्छी बातें आज हम अपनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। हम दीदी का गुलदस्ते और बैच के द्वारा भी स्वागत करेंगे।
ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। जो आइल्स में बैठे हैं, इज इट पॉसिबल टू कम इन द मिडिल? इज दैट ओके? थैंक्स। यदि कोई आप लोगों को दिक्कत ना हो तो सीट्स कोई रिजर्व नहीं है, यू कैन टेक द फ्रंट सीट्स। थैंक्स। थैंक यू। ये बीच के जगह भरेंगे ना तो इट वुड लुक गुड। जो यहां बैठे हैं ऐसा लगता है हिंदुस्तान पाकिस्तान है। रूठ के बैठे हो एकदम पीछे, रूठे तो नहीं है? हाँ तो आ जाइए, ये जस्ट फिल दीज सीट्स इन द मिडल। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप दो दिन से यहां पे एक स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं। यह स्थान ऐसा है जो बगैर कोई मेहनत के आपको एक वाइब्रेशन फील कर सकते हैं। यह आध्यात्मिक एक अनुभूति करने के लिए खास स्थान पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। इट्स वेरी नेचुरल। और दो दिन से आप राजयोगा के कई बातें सुनते रहे होंगे, पर योग में जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग जो सिखाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली बात, योग माना अपने आप से मिलना। इंसान अपने असली स्वरूप से, असलियत से, एक नेचुरल क्वालिटी से काफी दूर है। हम पता नहीं किन आइडेंटिटीज को लेकर के किन लेबल्स में उलझे हुए हैं और अपने आप से काफी हम दूर हो चुके हैं। तो मेडिटेशन का सबसे पहला स्टेप है कि अपने आप से मिलना, यानी जो रूप हम यहां का देखते हैं, आईने के सामने खड़े होकर देखते हैं, वो तो हम रोज देखते हैं, मगर वो जो अंदर का रूप है काफी समय से हम अनजान हैं, जो बहुत सुंदर है। इट्स लाइक अ क्रिस्टल क्लीन स्टिल वॉटर। तो उस शांत स्वरूप से हम मिलते हैं, ये मेडिटेशन का सबसे पहला स्टेप है। और जो इंसान खुद को जानता है, समझता है, इससे सबसे बड़ी बात यह है कि वो अगला इंसान को समझ सकता है। आज की दुनिया में, आई इंक्लूड इंडिया, रिलेशनशिप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इट्स बिकम यू नो ग्लोबल प्रॉब्लम इश्यू। एक इंसान दूसरे इंसान को समझ पाना लंबे समय तक प्यार से, शांति से, खुशी से बिताना वेरी डिफिकल्ट। यस। तो जो व्यक्ति खुद के बारे में कुछ भी नहीं जानता हो कि मेरी फीलिंग्स क्या है, मेरे सोचने का ढंग क्या है, मेरा मूड क्या है, मेरी इमोशंस क्या है, मेरी एटीट्यूड क्या है, मेरा बिहेवियर ऐसा क्यों है, ये कुछ भी हम अपने बारे में नहीं समझते, तो अगले इंसान की इमोशंस, फीलिंग्स, बिहेवियर, एटीट्यूड को कैसे समझ पाएंगे? पॉसिबल है? मुझे खुद को नहीं मालूम मेरा मूड चेंज क्यों होता, तो अगला व्यक्ति का मूड क्यों चेंज हो रहा है, वो व्यक्ति ऐसा क्यों व्यवहार करता, ये कैसे मैं समझ सकती हूँ? तो सबसे फर्स्ट जो फायदा अपने आप को जानने से, हम जिनके भी साथ रह रहे हैं उनको हम समझ सकते हैं। एक कपल आए थे कुछ साल पहले मेडिटेशन सीखने, और दो चार सेशंस के बाद पति कहता है, बहन जी मेरे मन में काफी दिन से एक प्रश्न है। मैंने कहा कहिए। कहता वो अपने पत्नी को दिखा के ऐसे कहते, ये इनसे इनके साथ मैं 40 साल से रह रहा हूं, अब तक मैं समझ नहीं पा रहा हूं। वो पत्नी भी कहता ये भी मेरा आदमी है, इनके साथ में मैं 40 साल से रह रही हूं, मैं अभी नहीं समझती। वेरी इंटरेस्टिंग। तो मुझे लगा दो इंसान एक छत के नीचे 40 साल तक रह रहे हैं और एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं, और वो लेबल्स लेके घूम रहे हैं कि ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे है, फलाने डिगने, पर अंदर से कुछ ऐसा कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि बेसिकली हम अपने आप से कनेक्टेड नहीं है। तो अगला इंसान से कनेक्ट होना आप समझ सकते, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज, बहुत बड़ा मुश्किल है। खुदा को जानना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए मेडिटेशन मीन्स टू नो योरसेल्फ, अपने आप को न केवल जानना, पहचानना, पर महसूस करना। क्योंकि मेडिटेशन बेसिकली इज एन एक्सपीरियंस, यहां कुछ सुनने सुनाने इसका ज्यादा वो नहीं है। वेल इट्स डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ इट, पर मेडिटेशन बेसिकली इज एन एक्सपीरियंस, इज अ प्रोसेस वेयर वी गो इनटू दैट स्टेट ऑफ डीप एक्सपीरियंस, जहां इंसान अनुभव करता है, महसूस करता है। बातें हमने बहुत सुनी हैं, बहुत पढ़ी हैं, अच्छे अच्छे बोलने वाले आपको दुनिया में काफी लोग मिल जाएंगे, मगर यहां पे एम्फसाइज जोर इस बात का देते, हम इसको अनुभव करें, महसूस करें, जो हम सुनते हैं, जो हम जानते हैं, इसको एक्सपीरियंस करें। और मेडिटेशन में दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द फर्स्ट प्लेस, योग माना है एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप, संबंध जोड़ना, इसको योग कहते हैं। अब संबंध जोड़ने की बात जब आती है, वह दो बातें होंगे, हैं जी, कौन किससे संबंध जोड़ रहा है, कौन किससे संबंध जोड़ेगा, सो टू एंटिटीज। और यहां संबंध इंसान इंसान के साथ जोड़ने वाली नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक है, वो स्वाभाविक हो जाता है। यो इसको राजयोग इसलिए कहते हैं कि आत्मा, जो आपने कल आत्मा का परिचय लिया होगा, जो चैतन्य शक्ति है, जो मेरी असली आइडेंटिटी है, जो मेरा असली स्वरूप है, जो शांत है, उस आत्मा का संबंध ऊंचते ऊंच, ऊंचते ऊंच ईश्वर के साथ होना, इसको ये राजयोग कहते हैं, सबसे ऊंच, सबसे ऊंच। हर इंसान का संबंध ईश्वर से है ही है, मगर वो संबंध, यू नो द टाइप ऑफ रिलेशनशिप जो ईश्वर के साथ है, वो थोड़ा पेचीदा है, क्योंकि हम उन ऐसे संबंध रखे हैं जिनको हम जानते भी नहीं है, ठीक से पहचानते भी नहीं है, एक बिलीफ सिस्टम के आधार पर जो हमें बड़ों ने बताए हैं, हमने सुने हैं, पढ़े हैं, हम सोचते रहे हैं, पर एक्चुअली जो हमारा संबंध है ही है वो हमने जोड़ा नहीं है अब तक, जैसे हम अपने बच्चों से हमारा संबंध है, हैं जी, हमारे माता पिता से हमारा संबंध है, हमारे भाई बहनों से संबंध है, जो हमारे दोस्त है काफी साल से हम जानते हैं पहचानते हैं, उनके साथ हमारा संबंध है, वो किस तरह के संबंध है। एक बात बताऊं, संसार में ऐसा कोई स्कूल नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है अभी तक तो, जहां इंसान को सच्चा प्यार करना सिखाता है। है कोई ऐसे स्कूल्स? वेल आई डोंट नो, आई नो आई डोंट नो इफ यू नो, ऐसे कोई स्कूल्स किसी ने बनाया नहीं है, पर यहां पे योग माना ही अपने आप से रिस्पेक्ट और प्यार, ईश्वर के साथ रिस्पेक्ट और प्यार करना सिखाते हैं। आजकल हम सब बहुत बड़ी बीमारी से गुजर रहे हैं, मालूम है, टू बिग डिजीज़, नंबर वन एक्सपेक्टेशन, बहुत ज्यादा अपेक्षा हम रखते हैं लोगों से, सिचुएशन से, हर बात से, इट्स अ बिग डिजीज। सेकेंड, कहीं ना कहीं इंसान डिप्रेशन से गुजर रहा है, इट्स अ डीप सैडनेस, वो खुश नहीं है। ऐसा हम पूछे आपसे, आप खुश हैं? आप कहेंगे हाँ हम तो बहुत खुश हैं, पर अपने दिल से आप पूछे आप सच में खुश हैं? खुशी वो नहीं आज हाँ यही कर लिया, वो घूमा फिरा, वो हुआ, फिर कल अगला दिन तो ठुस हो गए, जैसे टायर से हवा निकल गया हो, बलून से हवा निकल गया हो, फिर अगला दिन, फिर दो दिन के बाद फिर थोड़ा हंसे मुस्कुराए, फिर दो दिन के बाद फिर हो ऐसा हो गया, इसको खुशी नहीं कहते। इतना बड़ा बर्तन में दूध है, इसमें दो ड्रॉप, दो बूंद आप जहर डाले, उसको क्या कहेंगे, जहर की दूध पियेंगे? कोई पियेंगे? जस्ट टू ड्रॉप्स, पर इतना सारा बर्तन भर करके दूध है और प्योर गाय का दूध है, तो वही तो बूंद उसमें जहर है, तो उसको दूध कहेंगे कि जहर कहेंगे? ज्यादा मात्रा क्या है? दो बूंद पड़ने पर ही वो इतना बड़ा बर्तन भर करके दूध जहर हो जाता। तो मेरे मन में अच्छे अच्छे विचार आते, खुशी के विचार आते, कभी गम के आते, कभी खुशी के, कभी गम के, तो इसको गम कहेंगे कि खुशी? आप बहुत खुशी से दिल खोल के कब हंसे थे लास्ट टाइम? 5 दिन पहले? कल? मैं कल यहाँ आने की बात नहीं करी, इससे पूर्व, यहाँ आने के पहले हैं? शादी के दिन हंसे थे? ओ तो जब से शादी हुए तब से आप हंसे ही नहीं। Anyway, that's good. तो जिंदगी इंसान का, हम सब जो जीवन जी रहे हैं, वो जिंदगी में यदि स्पिरिट नहीं है, खुशी नहीं है, आप हर रोज हर परिस्थिति में हर इंसान के साथ मुस्कुरा नहीं पाते हैं, और एक जसीनो लाइक वो उत्साह से नहीं जीते, उसको जिंदगी नहीं कहते। आई एम सॉरी, हमारा 50, 40, 60, 70 में भी मोर देन दैट हुआ होगा, मगर हम जीना शुरू ही नहीं किया। हर रोज कोई ना कोई बात लेकर के मर ही रहे हैं, वो मौत एक दिन लेके चला जाएगा, फिनिश। पर जो मौत हम मर रहे हैं ना, वो हर दिन मर रहे हैं। बुरा तो नहीं लगा? तो जिएंगे कब? वो आनंद, वो खुशी से जीने के लिए ही हम पैदा हो रहे हुए हैं। कहने मात्र हम कहते हम जी रहे हैं, पर कुछ लोग यू नो द वे द टोन कैसे, हाँ जी रहे हैं, ओ जी तो रहे हैं, जैसे धक्के से गाड़ी चला रहे हो, बट दैट्स नॉट द वे। माने वो जीने वो तरीका नहीं है। तो इसीलिए हमें योग से, आप ये न समझे कि ये योग करना हो तो हमें वो छोड़ना पड़े, घर छोड़ना पड़े, ये कपड़े ऐसा पहनना होगा, ये करना, ऐसी बात नहीं है। हम जहां भी हैं, जिन परिस्थितियों में हैं, जिनके साथ है, वहां हम खुश रहने के लिए हमें कुछ शक्ति चाहिए। उन परिस्थितियों में हमें राजा की तरह जीना चाहिए। डिस्टर्ब करने वाले कई बातें आएंगे, अभी भी आप डिस्टर्ब भी हो रहे हैं ना यू सी, वे छोटी छोटी बातें हैं, पर इंसान का मन बड़ा दृढ़ है। उस दृढ़ मन को हमने इतना फ्रजाइल बना दिया है, इतना डेलिकेट बना दिया है, छोटी बात से भी टूट जाता है, ऐसी बात से भी टूट जाता है, तो जीने के लिए ताकत ही नहीं रही अंदर से। मन तो एकदम फ्रजाइल हो गया है। तो योग बहुत जरूरी है आध्यात्मिक जीवन जीने के हिसाब से, मैं नहीं कह रही हूं, नॉर्मल जीवन जीने के लिए, दुनियावी जिंदगी जीने के लिए भी ताकत चाहिए, जो हमारे पास है नहीं। यू नो देयर सो मेनी चैलेंजेस, आज हर दिन चैलेंज है। आध्यात्मिक जीवन तो बहुत दूर की बात है। आप जहां हैं वहीं रहें, जो कर रहे हैं आप वहीं करते रहें, पर वो ठीक से निभाने के लिए भी ताकत तो चाहिए ना, खुशी से जीने के लिए ताकत तो चाहिए ना। तो वो ताकत रही नहीं है, और मेडिटेशन विल गिव यू दैट हैप्पीनेस, ओके। और जब हम योग में संबंध की बात कर रहे हैं, इंसान बगैर संबंध के जी नहीं सकता। जी सकता है? आपको कई कभी कभी ऐसा लगता होगा कि अरे भाई, इन लोगों के साथ पूरे जिंदगी यही चेहरा, यही लोगों के साथ काम करने से तो कहीं भाग जाए, ऐसे जगह कोई इंसान ही ना दिखे, हम थक गए भैया। मैं कहीं मैं एनिमल्स के साथ रह लूंगी पर इंसान का चेहरा ना दिखे, ऐसे दूर चले जाना चाहिए। कई बार ऐसे ऐसे विचार भी मन में आते, क्योंकि हम थक चुके हैं, वी आर टायर्ड, मेंटली टायर्ड, मगर दैट्स नॉट रियल। मान लीजिए एक बहुत बड़ा महल आपके लिए बना दिया जाए, ऐसा महल जो शानदार हो, कभी आपने पिक्चर्स में भी ना देखा हो, ऐसा शानदार महल हो जिसमें हर चीज हो, हर चीज हो, और आपको अकेला वहां छोड़ दिया जाए, कौन जाएगा? पर इंसान नहीं होगा वहां पे, खाना होगा, कपड़े होंगे, सब होंगे, अकेला होना होगा, जाओगे? अरे थोड़े दिन के लिए तो भेज दो बाद के बाद देखा जाएगा। दिस आर ऑल टेम्पररी थिंग्स। बेसिकली हर इंसानों के साथ संबंध के बिगैर इंसान को आनंद नहीं आएगा, पर संबंध कैसा बनाए रखे, सस्टेन करे, मेंटेन करे, हमें नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात, हमारे ईश्वर के साथ का संबंध हमें मालूम ही नहीं है। यू नो लाइक 0000, देयर आर मेनी जीरोज, पर सिर्फ आप जीरो डालते जाएंगे उसका कोई वैल्यू है? उस जीरो के पहले आप एक डालेंगे, तो एक के बाद जितने भी आप जीरोज डालेंगे, हर जीरो का महत्व है, ठीक है? दैट्स मैथमेटिक्स। इसी तरह हमने जिंदगी में कितने भी जान लिए, कितने भी बना लिए, वो सब जीरो 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 है। और एक को न जाना, बस ईश्वर को न जाना और सिर्फ बाकी सब कुछ जानते रहे, वो जीरो के समान है। पर उसको जाना, इसके बाद आप जो भी जाना, जिसके भी साथ आपने संबंध बनाया, एवरी जीरो हैज अ वैल्यू। तो हम उस एक को नहीं जानते, उस एक का पहचान नहीं है। हर इंसान यहां जो बैठा है और जो बैठा ना भी हो, सबके साथ उनका संबंध है। Whether you know or you don't, but we all have that relationship. पर हमको वो जैसे you know, it's like a disconnected. हम सब अपने अपने रीति से, अपने अपने you know, method से हम जरूर याद करते हैं, पर it's not the right way. संबंध भी इंसानों के साथ हम सबका है, पर ठीक से नहीं है। जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं है, इसलिए तो गड़बड़ी है। हम भाग नहीं सकते, रह नहीं सकते, ऐसा लगता है भैया फंस गए, क्या करें? यू नो दैट टाइप ऑफ फीलिंग, उस तरह के जो आपके अंदर फीलिंग आते हैं, तो आप मान समझ लीजिए ये जो इंसान के साथ पीछे संबंध हम निभा रहे हैं वो ठीक वे नहीं है। That's not the right way, the way we should be. तो ईश्वर के साथ भी ऐसा ही है। तो सबसे पहले आप आंखें बंद करें, ठीक से बैठे, सो नहीं जाना। ठीक है, डीप ब्रेथ, लंबे श्वास ले, आंखें बंद कर आराम से बैठे। ऑलराइट, डीप ब्रेथ प्लीज, लंबे श्वास ले, रिलैक्स करें। अब अपने मन में जस्ट आप अपने हिसाब से सोचे कि परमात्मा कैसा होना चाहिए, उनके गुण कैसे होंगे, उनके हर बोल कैसे होंगे, उनका रूप क्या होगा, क्या उनकी शक्तियां होंगे। परमात्मा का कर्म क्या होगा, भगवान जो कर्म करता है वो किस तरह के होंगे। और मेरा ऐसे ऊंचते ऊंच जिनको परम आत्मा कहते हैं, किस तरह के संबंध में रखना चाहूंगी, क्या वो मेरे लिए भगवान है, दोस्त है, पिता है, रक्षक है। यदि वो मेरा पिता है तो वो मेरा पिता जो परम आत्मा है वो कैसा होगा। इंसान जो अच्छे से अच्छे पिता होता है वो कैसा होता है। परम आत्मा मेरा पिता है तो कैसा होगा। मैं उनका बच्चा हूं, हम उनकी संतान हैं, तो मेरे से कैसे बात करेंगे। यदि वो मेरा दोस्त है तो मेरे साथ वो कैसा होगा। कितने सारे गुण होंगे, ओके? टेक अ डीप ब्रेथ, ओपन योर आईज, आंखें खोले. सोचा, कुछ दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया, दिखाई दिया कि नहीं? नहीं, हाँ या ना? हाँ माना ऐसा करे, ना माना ऐसा करे, हाँ नहीं, दिखाई नहीं दिया. ओके, तो आपकी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन काम में नहीं आया. आपके हाथ में यदि वो दे दे, ब्रश दे दिया जाए और कहे पेंट करो जैसा आपको चाहे, दिल में जितना आपकी इमेजिनेशन, आपके विजन या आपके जो क्रिएटिविटी है वो सब कुछ उसमें डाल करके पेंट द बेस्ट, तो आप कैसा पेंट करोगे? इंसानों में बहुत सारी कमी कमजोरियां हैं. इंसान, आज के इंसान, अब के इंसान, वर्तमान की मैं बात कर रही हूं, हम सब मिक्स्ड बैगेज ऑफ बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव. यस, हमारे में 10 अच्छी बातें हैं तो 1-2 ऐसी बातें हैं जो शायद मुझे खुद को पसंद ना आते हों, दूसरे मुझे पसंद ना करे वो अलग बात है, वो उनकी अपनी. हाँ जी, हर इंसान को हीरा पहचान करना तो मुश्किल है, तो बेशक मैं हीरा हूँ, एक एक जो बैठा है हीरा है, हर कोई थोड़ी ये खरीद सकता हीरा, वो कोहिनूर हीरा तो कोई पहचान ही नहीं सकता, तो वो अलग बात है कि अगला व्यक्ति मुझे कितना पहचानता है, कितना रिस्पेक्ट करता है, कितना प्यार करता है, कितनी मेरी भावनाओं का कदर करता है, दैट्स डिफरेंट स्टोरी, वो अलग बात है. पर कई ऐसी बातें होंगे जो हम खुद को पसंद नहीं करते, राइट? हम नहीं चाहते कि ये बात नहीं होनी चाहिए, पर मैं मजबूर हूं, उससे मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूं, मुझे मालूम है. पर अगला व्यक्ति जब ये बोलता है मुझे शायद पसंद नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा ईगो है ना, वो हर्ट होता है. पर मैं अंदर से जानती हूं कि ऐसी बातें होनी नहीं चाहिए. तो हम सब में कहीं ना कहीं, चाहे आधी भी बात हो ना, कुछ ऐसी ऐसी बात है विच डजंट मेक अ कंप्लीट मैन, हमें एक संपूर्ण इंसान नहीं कह सकते. तो इसीलिए हमारे जो सोच, नजर, देखने का नजरिया है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव, थोड़ा सा इस तरह के बातें हैं. पर परमात्मा जिसको हम समझते हैं, सोचते हैं, वो इन सब बातों से ऊपर. यू कैन इमेजिन अ परफेक्ट 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 ऐसी बात. तो परम आत्मा है ऊंचते ऊंच. जी, हम रोज अपने अपने सेल फोन्स को चार्ज करते हैं. आपके गैजेट्स जो भी है वो चार्ज होना बहुत जरूरी है. दिन भर काम करे, बाय द एंड ऑफ द डे यू हैव टू चार्ज इट फिर काम करने के लिए. तो हम सभी भी पूरा दिन इतना बोलते हैं, इतना सोचते हैं, इतना करते हैं, चार्ज होता है? चार्ज होता है? कितने दिन हो गए चार्ज किए, हमारे पास वो गुम ही हो गया है, वो चार्ज करने वाला चार्जर जिसको कहते हैं ना, वो हमारे पास है भी नहीं, पता नहीं कहाँ गुम गया. और जहां चार्ज करते हैं तो उसमें तो बहुत शक्ति होनी चाहिए, तब तो प्लग लगाएंगे, वो चार्ज एनर्जी खींचता है, उसमें भरता है अपने गैजेट में. तो मेडिटेशन भी उस परमात्मा के साथ प्लग करना, जहां पे पूरी शक्ति आत्मा के अंदर आती जाएगी, उनके गुण, उनके शक्तियां आते जाएंगे, और आई फील एनर्जाइज्ड. मेरे अंदर जो जो कमियां हैं, जो जो बातें मैं खुद में भरना चाहती हूँ, जो जो बातों से मैं खुद निकलना चाहती हूँ, एंड मोर इम्पोर्टेंट जो जो बातें मैंने जिंदगी में बुद्धि से मन से भूलना चाहती हूँ, वो सब क्लीन हो जाएगा। या आप में से कौन रोज अपना घर में डस्टबिन खाली करता है एवरी डे, चाहे आपके ऑफिस के हो, किचन के हो, किचन के स्पेशली रोज कौन क्लीन करता है? डस्टबिन रोज क्लीन नहीं करते हैं, एम्प्टी तो करते होंगे, खाली तो करते होंगे, अपने उस कूड़े कूड़ा डालने वाला डब्बा खाली नहीं करते? हंसी आती ना, ये पूछना ही कैसे सवाल है। तो ये जो मन है इंसान का, एक तिजोरी है। संसार में से कोई शक्ति है ही नहीं जो इंसान के मन के साथ तुलना की जाए, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ऐसा शक्तिशाली, ऐसा एक बहुत बड़ा गिफ्ट इंसान को मिला है, जिसमें सोचने की ताकत है, समझने की ताकत है, विजुअलाइज करने का है, हैं जी? ऐसा मन को हमने, जिसमें अच्छे अच्छे विचार है, जो इंसान को चलाने के लिए एक स्टीयरिंग है मन, तो ऐसा मन को आज हमने क्या बनाया है? क्या बनाया? डस्टबिन। मैं नहीं बोल रहे, आप बोल रहे हैं, तो उसको खाली नहीं करना। अरे इन्होंने मेरे को उस दिन ऐसा बोला था, अरे मैं जिंदगी भर नहीं बोलूंगी। नहीं, वो जिसने बोला वो मर भी गया, पर हम बात को नहीं भूलेंगे। तो क्या मन में रखा है हमने? एंड एवरी टाइम हम सोचते हैं, खुद को बहुत बुरा फील होता है। तो जो बात हमें दुख दे रहा है, दो जिस बात से हमें बुरा फील हो रहा है, हम वो बार बार सोच रहे हैं। तो ये हमारी स्टीयरिंग है। कहां घुमा रहे हैं आप स्टीयरिंग को? हमें पता है खड्डा है, देख रहे हैं, तो वहीं वहीं पर ले जा रहे हैं गाड़ी, देख देख करके भी ले जा रहे हैं। तो क्या जिंदगी में खुशी होंगे? और आप अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे, आपको अब अच्छा लग रहा होगा। यहां से जैसे जाएंगे, नाश्ता वास्ता करेंगे, इधर हाय हेलो करेंगे, चाहे 3-4 दिन के बाद माउंट आबू से आप जाएंगे, तो आपको तो पूछेंगे नहीं क्या सीख के आए, आपको हार्डली 2-4 बात याद रहेंगे। तो अच्छी बातें गायब, और एक वो बुरा, अरे वो तो क्या, वो बोलते भी है, बड़े शान से बोलता, हम नहीं भूलेंगे जिंदगी भर, आपने ऐसा बोला था, अरे नहीं मरने तक हम नहीं भूलेंगे। जिसने बोला वो खा पी के कराटे मार के सो रहा है, और जिसने रखा यहाँ पे उसका हालत खराब। सी दिस इज व्हाट वी आर हैविंग ऑल दैट। तो जिसके मन में ऐसी बातें इकट्ठे करके रखे हैं, क्या ऐसे मन में ईश्वर को पहचानने की, ईश्वर की याद वहां ठहर सकता? वो खुद भी आके खड़ा हो जाए ना, हम पहचानेंगे भी नहीं, समझ ही नहीं आएंगे, क्योंकि वो समझने की जो ताकत है, पहचानने की जो ताकत है, वो धीरे धीरे मन में ऐसा कचरा पड़ते 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 कम होता चला जाता है। इसलिए मेडिटेशन में इस री एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप विथ सेल्फ एंड विथ गॉड, ईश्वर के साथ भी और अपने आप के साथ भी जो है। ऐसा नहीं हम कुछ नया कर रहे हैं, पर हम भूल चुके हैं, भूल चुके हैं। हम दूर होते, जैसे अपने आप से दूर होते गए हैं, ईश्वर के साथ भी दूर होते गए हैं, एंड वो जो पहचान है वो धुंधला सा होता चला गया। द फर्स्ट थिंग इज, कल हमने एक बात सुनी, आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट है, एक ज्योति सा बिंदु, एक शक्ति है, एक चैतन्य शक्ति है जो शरीर को चलाने वाली है। तो आत्मा एक पॉइंट है, तो परम आत्मा कैसा होगा? बिल्ली का बच्चा कैसा होता? हाथी की तरह? चूहे का बच्चा? चूहे जैसा। ओके, हॉर्स का बच्चा? घोड़े का बच्चा? घोड़े जैसा। इंसान का बच्चा? परमात्मा का बच्चा? अच्छा, अभी मैं उल्टा पूछती हूँ, चूहे का पिता कैसा होगा? जी, हाथी जैसा? चूहे जैसा? पक्का? अच्छा, डॉग का बच्चा? कुत्ते का जो पिता है, बाप है, वो कैसा होगा? कुत्ते जैसा। हाथी का बाप? और आत्मा का बाप? बस इतनी सी बात है, तो उलझने की तो बात ही नहीं है। तुम क्या क्या उलझन यहां पर लेके खड़े हैं? दैट्स सो स्ट्रेट। आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट है, एक शक्ति है, सूक्ष्मति सूक्ष्म। तो आत्मा का पिता जो परम आत्मा है, वो भी तो ऐसा ही होगा ना। आप या तो माता जैसे होंगे दिखते होंगे, या तो पिता जैसे दिखते होंगे। तो ये चेहरा देखते, अच्छा आप फलाने के बेटे हैं, तो फटाक से बोल देते हैं। तो आत्मा जो सूक्ष्म है, वो तो परम आत्मा का बच्चा है। यानी परम आत्मा भी अति सूक्ष्म, एक ज्योति सा बिंदु है, गुणों में शक्तियों में महान है। वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी बात शक्तिशाली होने के लिए रूप में बड़ा होना जरूरी नहीं है। बिगर इन साइज डजंट मेक अ थिंग पावरफुल, नॉट नेसेसरीली। एटम बॉम्ब है वो कितना बड़ा? ऑन द कॉन्ट्ररी, स्मॉलर द थिंग इज पावरफुल इट इज। पहले वो रिकॉर्डर आते थे, बड़े बड़े रिकॉर्डर्स आते थे, आपने देखा, इसको क्या बोलते हैं, ग्रामाफोन, इतने इतने बड़े 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 बड़े। फिर टेप्स आया, फिर सीडीज आए, अभी वो थंब ड्राइव्स आते, पेन ड्राइव्स आते हैं, अब फिर भी वो चिप्स आते हैं, इतने इतने आप मोबाइल में भी डालो, उसमें भी डालो, इतनी सी उतने में। तो छोटा छोटा जितना हो रहा है उतने, वही शक्ति जो बड़ा था। तो परमात्मा बहुत शक्तिशाली, इसका मतलब ये नहीं बहुत बड़ा रूप में इतना बड़ा होगा ना, रूप वही है जो आत्मा का है। पांच बातें हैं जो बहुत जरूरी है परमात्मा के बारे में जानना, फाइव थिंग्स। नंबर वन, आत्मा भी ज्योति सा बिंदु है, परमात्मा भी ज्योति सा बिंदु है। तो कैसे पता चलिए आत्मा है या परमात्मा है? कैसे हम पता चले कि ये ईश परमात्मा है? मतलब ऊंचते ऊंच इतना परमात्मा बड़ा है, बहुत शक्तिशाली, सर्वशक्तिवान है। इतनी सी, सो टाइनी। नंबर वन, जितने भी इंसान है संसार में, सब आत्मा है, ठीक है? कोई भी इंसान, कैसा भी इंसान, हूएवर इट इज, सब इंसान मनुष्य शरीर है। जिस किसी को भी शरीर है, ध्यान से सुनेंगे, जिस किसी को भी शरीर है, ये देह है, सबको जन्म और मरण के चक्र में आना ही है। जन्म लिए हैं तभी तो शरीर है, शरीर है तो जाएंगे जरूर। तो मृत्यु और जन्म शरीर का होता, जो जिसने शरीर धारण किए हैं उनको उतारना भी पड़ेगा ना। अब ये कपड़े पहने हैं, कल तो उतारना ही पड़ेगा ना, दूसरे पहनेंगे ना। तो जन्म और मरण के, मृत्यु के चक्र में हर इंसान आना ही है। पर परमात्मा जिनको कहते हैं, उनको ये जन्म और मरण के चक्र में आते नहीं है, जरूरत नहीं है। क्योंकि यदि वो भी आए तो हमको उस चक्र से मुक्ति कौन देगा? हम खुद खड्डे में पड़े हैं तो निकालेंगे कौन? कोई होगा ना खड्डे से बाहर जो हमको हाथ पकड़ के निकालेंगे? और ऐसा हो जो खुद निकालते निकालते गिर न जाए, खुद इतनी भी शक्ति होनी चाहिए वो निकाले भी और खुद वहां स्टडी भी रहे। तो परम आत्मा को इसलिए मुक्तिदाता कहते हैं, लिबरेटर। न केवल इस चक्र से वो लिबरेट करते पर इस चक्र में आने वाले, इस जर्नी में चलते चलते जो दुख और मुश्किलें हम फेस करते हैं उससे भी वो मुक्ति देते हैं। इज लिबरेटर। परमात्मा खुद इस साइकिल में नहीं आता, इस चक्र में नहीं आता, इसलिए परमात्मा को अजन्मा कहते हैं। जन्मातीत यानी जन्म मरण से भी अतीत है वो। हम सब जिसको भी है, वो श्री रामचंद्र है, कृष्ण जी है, क्राइस्ट है, बुद्धा है, हूएवर इट इज, हर इंसान को इस जन्म और मरण के चक्र में आना ही है। एक बात क्लियर? सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट, जिस किसी को भी ये शरीर है, वो कोई भी हो, कोई भी हो, देवात्मा हो, धर्मात्मा हो, कोई भी हो, हर शरीर धारी सुख और दुख के चक्र में आना है। सुख भोगना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा। शरीर है ना, आप सोएंगे, खाएंगे, खाने में खट्टा भी है, मीठा भी है, सोने में दिक्कत है। अभी आप 10 साल के, फिर 30 साल के बने, 40 के बने, फिर शरीर है भाई, आज ये पैर में दर्द है, आज कमर में दर्द है, कल ठीक भी हो गया। तो सुख और दुख भोगना है। आज हम आपको कहेंगे, अरे भाई साहब आप तो फरिश्ते हैं, क्या बात है, आप जैसे दूसरे इंसान है ही नहीं संसार में, आप तो बड़े अच्छे कर्म से आपसे मिलना हुआ है, आपको कैसा लगेगा? अरे बहन जी क्या चेहरा आपका, ऐसा तो कोई है ही नहीं। तो ये सुनते समय आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना। कल कहे आप जैसा बेवकूफ कोई है ही नहीं तो कैसा लगेगा? हमको लगेगा धड़ाक से गिर जाता है, क्योंकि हमने वो एक्सेप्ट किया। जब हमने कहा आप तो फरिश्ते हैं, तो वो प्रेज जो है इस इन शब्दों में जो आनंद है उसको हमने स्वीकारा। हमने स्वीकारा क्या? अरे हाँ मैं तो सचमुच बहुत अच्छी हूँ, आप कह रहे तो अच्छी हूँ ना, देखो आप कह रहे मैं फरिश्ता, मैं बहुत अच्छी, वो सुख मैंने महसूस किया। कल आपने कहा आप कोई काम के नहीं है, बेकार है, तो वो भी मैंने एक्सेप्ट किया, उन्हें मैंने स्वीकारा। तो स्वीकारने पर वो जो मेरे अंदर वो भावना आई हीनता की, वो मैंने महसूस किया, तो सुख भी लिया तो दुख भी लिया। पर परमात्मा सुख दुख से अतीत है, अभोक्ता है। आप जाके कहो परमात्मा तुम बहुत अच्छे हो, उसको कोई नहीं फर्क पड़ना। उनको बोला आप तो पत्थर है, आपके अंदर दिल ही नहीं, उनको कोई नहीं फर्क पड़ना, क्योंकि ही नोज व्हाट ही इज, उनको मालूम है वो कौन है। अब आप कहेंगे अरे आप फरिश्ते हैं तो मेरे को लगता है थोड़ा तो मैं लगती होंगी, जरूर लगती होंगी, मेरे को मालूम है मैं नहीं हूं, पर आप बोल रहे तो मेरे को खुशी जरूर होगी, क्योंकि मैं एक्सेप्ट कर रही हूं। बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं क्या हूं मुझे नहीं मालूम ठीक से, इसलिए लोगों के बात का असर मेरे ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। उसने ये कहा, उसने ये नहीं कहा, ये कहा, तो लोगों के शब्दों के बोल के असर मन पर इतना पड़ता है, क्योंकि हर व्यक्ति के बोल व्यवहार को हम स्वीकार लेते हैं। मैंने आपको आम दिया सड़ा हुआ, आप क्या करते हैं? हाँ क्या करेंगे? इसका मतलब पहले लेंगे, फेंकने की बात तो बाद में ना। मान लीजिए मैं यहां से आपको दे रही हूं, आपको दिख रहा है वो सड़ा हुआ है, उसमें से ऐसे ऐसे पानी आ रहे दिख रहा है, तो इसका मतलब पहला आप लेंगे, इसके बाद में आप मेरे को डांट लगाओगे, क्या ये बहन जी सड़ी हुई हम दे, तो आप मेरे मन नहीं मन आप मेरे को गालियां देंगे, फिर उसको उठा के फेंकेंगे। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इसमें कितना समय चला जाता है। तो एक्सेप्ट करना ही सबसे बड़ा भूल है। हम कई बातें स्वीकार लें, हमें हमको पता है गलत बात है, तो मन तक स्वीकार क्यों करते हैं? तो हम इसलिए दुख भोगते हैं, सुख भोगते हैं। सुख दुख में हम सब आते हैं, परमात्मा सुख दुख से अतीत है। थ्री, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, हर इंसान चाहे वो कोई भी हो, देवात्मा हो, धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो, महात्मा हो, कोई भी हो, हर किसी को ये देह है, कर्म और कर्म के फल में बंधा हुआ है। ऐसा कोई इंसान नहीं जो अपने कर्मों से भाग सके, सबको अपने कर्मों के हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। भले भाग लो, जहां भागना हो भाग लो, कहां तक भागेंगे? इंसान अपने आप से कभी भाग ही नहीं सकता ना, अपने कर्म अपने झोली में लिए कहां तक भागेंगे? हर इंसान को उसका कर्म का हिसाब भुगतना पड़ेगा। आई मीन कर्म का हिसाब हमेशा कड़वा ही नहीं होता, कर्म का हिसाब अच्छा भी है, कर्म अच्छे भी कर्म है, खराब भी कर्म ही है। हम हमेशा कर्म को बुरा ही समझते हैं, इट्स नॉट नेसेसरली। इन्होंने क्या अपने जन्म में किए, देखो अरे राजा की तरह जी रहा है, तो भी तो कर्म ही है ना। तो कर्मों का फल हर इंसान को भुगतना पड़ता है। आज आप जो भी है, जैसे भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, जिनके भी साथ में हैं, जिनके भी जैसे भी माहौल में हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन जिम्मेदार है इसका? आपके मानसिक स्थिति जो भी है, शारीरिक स्थिति जो भी है, जिनके भी साथ आप जी रहे हैं, जिस माहौल में हैं, जहां हैं, उन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? कौन कहता मैं जिम्मेदार हूं? हाथ खड़ा करें। कौन जिम्मेदार है? मेरे पति जिम्मेदार है। कौन कहता है मेरी पत्नी है? कौन कहता है पता नहीं यही इंसान क्यों मिला, इतने लोग हैं, इनसे ही मेरा पाला क्यों पड़ा, ऐसे बच्चे क्यों मिले, वो ऐसे टिंटू वाला पिंटू वाला मिलता तो कितना अच्छा। सो वी बिगिन टू कंपेयर विथ अदर्स, बट आपका कर्म आपके साथ जुड़ा है, एंड दैट इज द राइट थिंग, यही आपके लिए सही है। भागिए मत, जो पत्नी, जो बच्चे, जो पति, जो अड़ोस पड़ोस ऑफिस जो मिले हैं, वही हमारे लिए सही है। इसको छोड़ के आप कुछ और ढूंढने जाएंगे ना, उससे बदतर मिलेगा। इसी को ही रिपेयर करके ठीक रहना होगा, इसको ही ठीक कर लीजिए, इससे अच्छा मिलने वाला नहीं है। क्योंकि अपने कर्म के हिसाब से यही सही है, एक्सेप्ट। या कर्म और कर्म के फल से हम सब बंधे हैं, पर परम आत्मा उसको कहते हैं जो ये कर्म और कर्म के फल से अतीत है, यानी कर्मातीत है, ऊंच, इनसे बंधन में बंधा हुआ नहीं है। फोर्थ, परमात्मा वो है जो सर्व धर्म मान्य है। आप एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एक रूप देंगे और कहेंगे ये भगवान है, 10 लोग मानेंगे, बाकी नहीं मानेंगे। बाकी लोग कुछ और रूप देंगे, फिर वो एक 10 लोग मानेंगे, बाकी लोग नहीं मानेंगे। इसलिए परमात्मा जन्म-मरण में नहीं आता, अजन्मा है, जो जन्मता ही नहीं है उनको शरीर मिलेगा, जो जन्मता ही है नहीं है उनकी मृत्यु की तो कोई सवाल ही नहीं। आपने कभी सुना परमात्मा मर गया? क्योंकि वो जन्मता ही नहीं है तो मरने की कोई बात ही नहीं है। श्री राम जी का जन्म हुआ, उनका अंत हुआ, कृष्ण जी का जन्म हुआ, अंत हुआ, कैसा अंत हुआ वो भी हम सब पढ़े हुए हैं, कैसा उनका अपने कर्मों का हिसाब भी उनको भुगतना पड़ा। क्राइस्ट क्रूसीफाई कैसे हुए हम सब जानते हैं, बुद्धा जी का क्या हुआ, उनका क्या हुआ, महात्मा गांधी जी का क्या हुआ, जो बड़े बड़े सन्यासी साधु थे, बलवान थे, उन जन्मे कैसे गए, कैसे द ग्रेट एम्परर अलेक्जेंडर, जिनको लगता है सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में है, उनका अंत, जिस किसी को भी शरीर है, जो बलवान है, धनवान है, वो है, ये है, बुद्धिवान है, शरीर है तो छोड़ना पड़ेगा। कपड़ा पहने हैं, अगला दिन आपको उसको उतार के नया पहनना पड़ेगा। जो पहने हैं उसके उतारने का गम है या नया पहनने का खुशी है, वो आपके ऊपर है। क्योंकि यदि मैं इस कपड़े से अटैच्ड हूं, मुझसे इस कपड़ा उतारने के लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मैं इससे अटैच्ड हूं। यदि मुझे नए कपड़े से प्यार है तो मुझे फटाफट मैं उतारूंगी, बच्चों को नया कपड़े लाके देंगे, क्या करेंगे। पर कई ऐसी बहनें होंगे, भाई भी होंगे, उनको पुराना रख के नए 10 पड़े होंगे ना, वो पूरा वही पहनेंगे, क्योंकि उनको वही अच्छा लगता है। आदत आदत की बात है। सो व्हाट एम आई अटैच्ड टू, बहुत इंपॉर्टेंट बात। जब कभी भी आप किसी बात से अटैच होंगे, पकड़ के रखेंगे, इसमें दो बातें जरूर आपको मिलेगा। नंबर 1, दर्द। सेकंड, फियर, भय। दर्द और भय लेके जिंदगी भर आपको जीना पड़ेगा। जिस किसी को भी आप पकड़ते हैं, पकड़ने का नतीजा ये दो है। जो दर्द आप बोल नहीं सकते, निगल नहीं सकते, भय, अंदर अंदर भय, कहीं छूट न जाए, रह न जाए, चला न जाए, पता नहीं, अनजान भय है, भय, इसके साथ ही हमें जीना पड़ेगा। या? और परमात्मा वो है जो सर्वोच्च है, सर्वशक्तिवान है। ये सांसारिक शक्तियों की बात नहीं, बहुत ऊंची, वो एक ऐसी बात, ये संसार तो हजार बन जाएंगे। हर इंसान के अंदर भी वो सारे शक्तियां मौजूद है, क्योंकि हम उन्हीं के संतान हैं। जीन्स, डीएनए, क्रोमोसोम्स, डीएनए है ना, आपके पिताजी के, दादाजी के, वो जीन्स जो आपके परम वंश के, परंपरा के जो जीन्स है, उसमें आपके डीएनए में वो दौड़ते, रगों में दौड़ते हैं। तो हम किसके बच्चे हैं, आत्मा किसकी संतान है? तो क्या हम परमात्मा के डीएनए हमारे में नहीं है? है डीएनए है कि नहीं? परमात्मा के सारे गुण, सारे शक्ति हम सब में है, सिर्फ इतनी सी बातें हम भूल गए हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है, ईश्वर के डीएनए हमारे रगों में दौड़ रहा है, आत्मा में वो सारे गुण हैं, तो क्या कमी है। पर योग माना याद, हम ये भूल गए हैं कि हम परमात्मा के डीएनए, हम इनके संत, सारी बातें मुझ में हैं। याद करना योग है, हम भूल गए। अब हमें और आपको शरीर है, इसलिए नाम रखा है। यदि नाम न रखते तो कौन किससे कैसे पहचानेंगे, कैसे पुकारेंगे, तो नाम जरूरी है ना। तो हम सबको इस शरीर पर नाम है, मगर परमात्मा को तो शरीर ही नहीं है, क्योंकि वो तो अजन्मा है, वो एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक ज्योति सा बिंदु है, निराकार है। निराकार का मतलब ये नहीं कोई आकार ही नहीं है, निराकार का मतलब ये शरीर का आकार नहीं है। पर नाम है तो रूप तो होंगे, रूप है तो नाम जरूर होगा। ज्योति सा बिंदु, जैसे आत्मा एक ज्योति सा बिंदु है, जैसे चमकता हुआ सितारा, परमात्मा भी एक ज्योति सा बिंदु है, जैसे मैं आत्मा हूं, क्योंकि वो मेरा पिता है, त्वमेव माताश्च पितत्वमेव, एक भगवान के सामने गाया जाता है, तुम ही माता हो पिता हो। देह के लिए माता अलग पिता अलग, पर आत्मा के लिए माता पिता वही है। देह में बंधु अलग सखा अलग, पर आत्मा के लिए बंधु भी हुई है, सखा भी हुई है, स्वामी भी हुई है, रक्षक भी हुई है, साथी भी हुई है। यानी परमात्मा हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, आपका हाथ पकड़ के चलाने वाला है, पर महसूस ही नहीं कर रहा है। इसी तो परम आत्मा एक ही संसार में ऐसी शक्ति है जिनको आत्मा के ऊपर नाम है। अब कोई भी पिता अपने बच्चों के लिए क्या करता है, अच्छा करता है, भला करता है कि बुरा करता है? भला करेगा, बुरा सोच भी नहीं सकता। तो परमात्मा हम सबके पिता होने के कारण वो सबके सारे विश्व के कल्याण ही करता है, अच्छा ही करता है। इसलिए परमात्मा कल्याणकारी है, मंगलकारी है, शुभकारी है। संस्कृत में शिव कहते हैं, शिव माना मंगलकारी, शिव माना कल्याणकारी, शिव माना अच्छा करने वाला। बचपन में स्कूल में वो मॉरल साइंस का एक पीरियड हुआ करता था, आजकल पता नहीं है भी कि नहीं। उसमें ये कहते थे भगवान जो करता है पक्का बुरा भी करता है? कौन कहता है बुरा नहीं करेगा? हाथ खड़ा करो, ऑनेस्टली हाथ खड़ा करो। जो समझता है भगवान कभी बुरा नहीं करता, हाथ खड़ा करिए। तो कोई मर गया तो क्यों बोलते भगवान ने ले लिया है? कोई कुछ हो गया ऐसे तो क्यों कहते हैं भाई भगवान, देखो भगवान भाई क्या करे, ये तो भगवान की लीला है। तो भाई यही काम है धंधा, ऊपर बैठ के यही करता रहेगा वो है? बस तो कभी भी भगवान खराब नहीं करता। आप अपने बच्चों के लिए खराब सोच सकते हो? ऐसे हमको सपने भी आ जाएंगे ना, भाई हम पंडित जी के पास जाते हैं, इसका कोई उपाय निकालो, ऐसा सपना आया हम बच्चे के लिए। इतना अच्छा सोचने वाला कि इंसान पाप हो सकता है तो परमात्मा क्या हो सकता है? सोचिए जरा, कभी कल्याण के बिगर अकल्याण सोच भी नहीं सकता, ऊंचते ऊंचे। तो जो इंसान बुरा उनके साथ होता है वो भगवान के किए हुए कर्म नहीं है, खुद के किए हुए कर्म है। बुरा करेंगे तो इसका फल अच्छा आएगा? आप करेले के बीज बोएंगे एप्पल निकलेगा, आम निकलेगा, करेला ही निकलेगा ना। अचानक आप दरवाजा एक दिन खोलो के इतने सारे करेला कहाँ से आ गया? अभी बीज बोया वो याद नहीं है, तो आप करेला देख रहे हो, आप सोच रहे हो देख भगवान ने करेला क्यों भेजा, अरे आम भेज देते, मेरे ही झोली में करेला भेजा। अब बीज ही बोया है करेला आपने, तो आपको वही मिलेगा ना। और बीज मैंने बोया हो, पड़ोसी वाला करेला खाए, ऐसा हो सकता? मैंने बोया है तो मुझे खाना पड़ेगा ना। तो इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है। तो परमात्मा को शिव नाम ये ना, क्योंकि वो कल्याणकारी है और हम सबके वो पिता है, बाबा है। अच्छा, हम परमात्मा कहेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे वो दूर दूर है। आप मान लीजिए आप डायरेक्टर हैं, हाँ, मिनिस्टर भी होंगे, पता नहीं कोई भी होंगे, पर आप अपने बच्चे के लिए क्या होंगे? मिनिस्टर होंगे, डायरेक्टर होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, चेयरमैन होंगे। अपने बच्चे के लिए आप हमेशा पिता ही होंगे। वो परमात्मा है, सर्वशक्तिवान है, रचयिता है, ऊंचते ऊंच है, पर मुझ आत्मा के लिए वो पिता है, बाबा है। इसलिए दिल से प्यार से हम शिव बाबा कहते हैं वो, क्योंकि वो मेरा पिता है। हाँ, मेरा पिता कौन है? सर्वशक्तिवान है। पता है मेरा पापा कौन है? अरे वो तो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है। हाँ, हम जो बोलेंगे वो लाके दे देगा। तो बच्चे क्या वो करते हैं? तो हमारा पिता कौन है? सर्वशक्तिवान है। कोई भी बड़ा आदमी आपका बड़ा अच्छा दोस्त होगा, आप फोन करेंगे वो सारा काम आपका कर देगा, एक फोन, बड़ा जिगरी दोस्त आपका होगा तो आपको कैसा लगेगा? अरे मेरे पास आओ, मैं आपका सारा काम कर दूंगा। वो मेरा बहुत, मान लीजिए मोदी जी आपके बड़े करीब के दोस्त है, एक फोन घुमा वो आपका सारा काम कर दे तो आपको क्या, किस नश कैसे चलोगे आप? आपको लगे उनसे बड़े आप ही हैं, क्योंकि दोस्त जो है आपके। तो हमारा दोस्त कौन? परम आत्मा, सर्वशक्तिवान। तो हमें कैसे चलना चाहिए? मुंह लटका के, डर से? ईश्वर मेरे साथी हैं, तो उस हिसाब से हमें चलना चाहिए। इसको कहते योग, कि मैं कौन हूं और मेरा कौन है, मैं किसकी संतान हूं, ये याद करना ही राज्यों का दूसरा स्टेप है। तो हम सब शिव बाबा, जो प्यार का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, सर्वशक्तिवान है, दयालु है, कृपालु है, ऐसे पिता के हम संतान हैं। और हम भूल गए, कहाँ ढूंढ रहे हैं, वहां ढूंढ रहे हैं। अरे वो पिता है आपके, दिल से पिता के नाते से आप याद करो। वो सारे जो शक्तियां, तो छोड़ो तो आना ही है, वो तो हमारे डीएनए में है ना शक्तियां, तो सारे उनके जो गुण हैं वो हमारे हैं ही हैं, पर वो महसूस हम करना शुरू कर देंगे, वो शक्ति हमारे अंदर जैसे प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। एंड दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ राजयोग। ओके, वो नहीं कहते हैं वो एक शेर का बच्चा बकरियों की भीड़ में आ गया था, छोटा सा बच्चा, तो बकरी सारे मैं करते थे, वो भी मैं करना सीख गया था। वो जो शेर का बच्चा, वो जो घास खाते थे ये भी घास खाता था, तो समझता था मैं तो बकरी हूँ, क्योंकि मैं बचपन से बकरी के साथ हूँ तो मैं बकरी हूँ। एक दिन शेर आया, देखा अरे ये तो मेरा बच्चा यहाँ घूम रहा है, बोला इधर आओ इधर आओ। वो तो डर गए, इतना बड़ा जानवर भाई पता नहीं क्या है, कहते तुम इधर आओ, तुम कौन हो? कहता तो मैं बकरी हूँ, मैं घास खाता हूँ, देखो वो बकरी है, मैं बचपन से इधर बकरी। बोले इधर आओ, तो एक वो पानी के पास ले गया, कहते तुम्हारा चेहरा देखो, कहते वो देखा मेरा चेहरा देखो, उसने देखा मिलता है क्या? थोड़ा थोड़ा तो मिलता है। तो तुम मैं करने वाली बकरी नहीं हो, तुम दहाड़ने वाले बहुत बड़ा एक शेर हो, तो दहाड़ो। उसने कहा मेरे को दहाड़ना आता ही नहीं है। कहते दहाड़ो, दहाड़ के दिखाया, ऐसा हम तो राजा है जंगल के, तुम बकरी बन के घूम रहे। खो गया, तो उसने दहाड़ा दहाड़ा प्रैक्टिस किया, कहता वाह, उसके कहता मैं तो भाई आई एम अ टाइगर, मैं तो शेर हूं। तो दहाड़ना शुरू कर दिया, एक जोरदार दो बार दहाड़ा, उसको वो नशा चढ़ा, रहे मैं तो शेर का बच्चा, शेर हूं। तो हम कौन? बकरी की शेर। हम बकरी बन के मैं सारा दिन मैं घूमते रहे। अब शिव बाबा कहते हैं अरे मैं क्या कर रहे हो, तुम मेरे बच्चे हो, शेर हो, शेर हो। शेर तो जंगल का राजा होता है, फंसने वाला, थोड़ी थोड़ा घास डाल दो फंस गया। बकरी फंस जाती है थोड़े घास में, हम तो सारे जंगल के राजा है, सारा हमारा ही, हम घास डालने वाले हैं, घास खाके फंसने वाले नहीं है। तो जो मैं बोल के फिरेगा वो थोड़े घास में फंसेगा। तो जो जंगल का राजा होता है, सारे जंगल के एनिमल्स को वो दाना डालने वाला होगा। तो हम इतने बड़े पिता के संतान, और हम देखो हालत, देखो मुस्कुरा भी नहीं सकते, मुंह लटके पड़े, छोटी सी बात आगे लटक गया मुंह। अब तो मुस्कुरा दो, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परिस्थिति आए, ये बात जरूर याद रखना, मैं किसकी संतान हूं, मेरा साथी कौन है, मेरा फ्रेंड कौन है, मेरा पिता कौन, और ये छोटी सी बात में मैं क्यों ऐसे फील कर रही हूं, क्यों साय महसूस कर रही हूं. यू गेट बैक दैट एनर्जी एंड दैट इज मेडिटेशन. फील गॉड्स प्रेजेंस. परमात्मा शिव बाबा मेरे साथ है, वो पिता है, वो याद बनी रहे चलते फिरते, उसको राजयोग कहते हैं. ओके, ओम शांति. एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चन. अब परमात्मा कौन है हमारे? पिता भी है, दोस्त भी है, साथी भी है, रक्षक भी है, माँ भी है, जो चाहो. आत्मा के लिए सब कुछ है. हम मंदिर जाते कहते भगवान तुम मेरे लिए सब कुछ हो, क्यों आपके कोई नहीं है क्या? वो शरीर के लिए जो भी है, पर आत्मा के लिए वो सब कुछ है. तो फील, चलते फिरते, खाना बनाते, दफ्तर में बैठे बातें करते, फील वो मेरे साथ है, मैं आत्मा हूं. शिव बाबा मेरा पिता है. बाबा बोलो, परमात्मा नहीं बोलो, भगवान नहीं बोलो, वैसे दूर दूर है वो. बाबा है वो, मेरा फ्रेंड है, दोस्त है, ही इज माय फ्रेंड. ओके, ओम शांति, हैव अ गुड डे. अब हमने थोड़ी देर में इसका अनुभव करेंगे. जस्ट सिट रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ. बस कुछ न तंत्र, न मंत्र, न जाप, न कुछ नहीं, सिर्फ मन में याद करना कि मैं कौन हूं. मैं अति सूक्ष्म, चैतन्य शक्ति आत्मा हूं. प्रकृति के बीच विराजमान इस शरीर को चलाने वाली मैं चैतन्य शक्ति हूं. इस शरीर का मालिक हूं. मुझे आत्मा का असली स्वभाव, धर्म, शांत है, प्रेम है, आनंद है. शरीर रूपी वस्त्र धारण कर इस विशाल संसार के रंगमंच पर मैं अनेक पार्ट बजाती रही, अनेक जन्म, अनेक रूप धारण करती रही. इस संसार के मेले में मैं अपने आप को, अपने घर को और अपने पिता को भूल गई. अब परमात्मा शिव बाबा मुझे अपना परिचय दिया, खुद का परिचय दिया. जैसे मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूं, चैतन्य शक्ति. करती हूँ। मन बुद्धि संस्कार सहित हूँ। परम आत्मा जो मेरा पिता है वो भी एक चैतन्य शक्ति है, ज्योति स्वरूप है। अब दिल ही दिल, मन ही मन प्यारे पिता शिव बाबा से बातें करें, जो आपको बात करना चाहे। शिव बाबा, प्यारे बाबा, आप मेरे सर्वस्व हो, माता भी पिता भी। सर्व गुणों के सागर हैं आप, सर्वशक्तिवान हैं। उनके सारे गुण शक्तियों को मन में याद करिए। उस प्यार, उस विश्वास के साथ, उस संबंध के साथ याद करिए। जो भी बातें आपको बाबा के साथ करना है, जो अन्य किसी से कर नहीं पाते, वो बात करिए। शांति सागर परमात्मा शिव बाबा के संतान होने के नाते मैं आत्मा शांत स्वरूप। सारे गुण मुझ में विद्यमान हैं। Feel the peace. Feel his presence. Om. ओम शांति। हैव अ गुड डे। इसका अभ्यास आप करते रहेंगे सवेरे शाम, जब भी समय मिले। जस्ट रिमेम्बर।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी का। इन्होंने हम सभी को बहुत ही सहज और रमणीक ढंग से परमात्मा का परिचय कराया। आप सब भी दीदी को एक हाथ की ताली से धन्यवाद देंगे। दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद।